शशि दीदी को आप सभी पहचानते ही हैं, जो नहीं पहचानते वो हाथ खड़ा करे। एक भी नहीं है जो नहीं पहचानते हैं। शशि दीदी पूरे पांडव भवन परिसर को बहुत ही सुचारू रूप से चला रहे हैं और उसके साथ साथ यज्ञ के जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। अभी हम शशि दीदी को ही सुनते हैं।
ओम शांति। बाबा अपना कार्य आप ही करते हैं और सारा कार्य बाबा ही कर रहे हैं और बाबा किसी न किसी को निमित्त बना करके कार्य कराते हैं। बाबा है बैकबोन और बाबा हाथ पकड़ करके चलाते हैं और बाबा सबको साथ भी देते हैं। तो मधुबन तपस्वी भूमि प्यारे प्यारे बाबा की विशेष कर्म भूमि, हमारी आदरणीय सभी दादियों की तपस्वी भूमि और कर्म भूमि और दादियों की पालना देने की भूमि में आप सभी का मधुबन के आंगन में मधुबन में अपने घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है इस भट्टी की सीजन में आप सभी को इतना बड़ा सुंदर भाग्य मिला है। वो भाग्य किसको मिला? एक तो जामनगर और दूसरा सूरत को। तो इनको इतना बड़ा भाग्य मिला, पहला ही टर्न मिल गया है। तो ये टर्न मिलना भी कोई सहज बात नहीं है और भट्टी के टर्न का बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, दो दो साल तक लाइन लगी रहती है। लेकिन आपका टर्न पहले आया तो उसके लिए बाबा भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं और मुबारक देते हैं। तो बाबा वतन से भी आप बच्चों को गोल्डन पुष्पों की वर्षा के द्वारा वरदान भी दे रहे हैं। आज भी बाबा ने वतन में आप सबको इमर्ज करके कितना सुंदर आपका श्रृंगार किया और बाबा ने विशेष कार्य दिया। तो मैं सोच रही थी कि जामनगर और सूरत के भाई बहने जो यहाँ आए हैं, ड्रामा अनुसार आप सबको ऐसा स्थान मिला है जहाँ पर बाबा साकार बाबा की संकल्प की भूमि है। जामनगर में प्यारे बाबा ने पहले से ही दीदी को दादी को भेजा था। वहाँ पर मुझे याद आ रहा है कि जामनगर में ही जवाहरलाल नेहरू एक बार आए थे तो उस समय दीदी को भी भेजा था और निवेद भाई भी गए थे उनसे मिलने के लिए। और जामनगर तो पहले से ही बाबा के संकल्प में था और बाबा ने आप सबको अपने ही संकल्पों के द्वारा, अपनी ही श्रेष्ठ भावना के द्वारा आप सबको बहुत कुछ पालना दी है। तो जामनगर के जो भाई बहने हैं तो क्या संकल्प करते हैं बताओ? एक गद्दी और देना, छोटी गद्दी और पतली है। बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। देखो जामनगर वालों को तो पहले से ही लौकिक में भाग्य मिल गया है। कौन सा भाग्य मिला है? जामनगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर उसके साथ द्वारका भी है। द्वारका है, सतयुगी द्वारका में तो जाएंगे ही, लेकिन उस द्वारका को देखने के लिए अभी आते हैं। तो सच्ची द्वारका कहाँ है? मधुबन में है। मधुबन में सच्ची द्वारका है ना, तो यहाँ भी अनुभव करते हैं। भविष्य राजधानी में जो श्री कृष्ण के साथ खेलेंगे वो हाथ खड़ा करें, हैं? सभी खेलेंगे, हैं? सभी खेलेंगे तो वहाँ तो खेलेंगे। और अभी तो आपको खेलने का कितना सुंदर मौका मिल गया है। अभी सूरत वाले भी बैठे हैं, सूरत वाले हाथ खड़ा करो, बहुत हैं। सूरत की विशेषता मालूम है क्या है? अरे वो तो हीरों की खान है, भूल गए क्या? सूरत में, सूरत का नाम ही हीरों की खान। वहाँ पर सूरत के अंदर एक इतना बड़ा कार्य चलता है हीरों को चमकाना, और सूरत से ही हीरे चमका करके पूरे विश्व के अंदर जाते हैं। वो तो स्थूल हीरों की खान है, लेकिन बाबा ने हमको कितने ज्ञान रत्न दिए हैं, कितने हीरे दिए हैं, कभी सोचा है कि इतने सारे हीरे हमको मिलेंगे, इतने हमको सब कुछ मिलेगा, कभी ऐसा सोचा कि नहीं? नहीं सोचा ना। अच्छा बताओ किसके पास सबसे ज्यादा हीरे हैं? धीरे धीरे बोलो, हमारे पास बहुत हीरे हैं। कितने ज्ञान रतन हैं, उन हीरों को चमकाना कैसे है? अंदर ही अंदर ज्ञान का मनन करना, जितना जितना उसको हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन में लाते जाएंगे तो उतना ही हमारे जीवन के अंदर वो ज्ञान रत्नों की प्रकाशता होती जाएगी। जैसे दादी रतन मोहिनी जी का नाम है रतन मोहिनी, उनका नाम भी बाबा ने ऐसा रखा कि वो सदा ज्ञान रत्नों से खेलती रहती थी। हमने दादियों को देखा सदा ही ज्ञान रत्नों से खेलते रहते थे, चाहे दादी प्रकाशमणि को देखो, चाहे दादी जानकी को देखो। गुलजार दादी के द्वारा तो प्यारे बाबा ने हम सबको इतने वरदान दिए, चाहे दादी रतन मोहिनी जी को देखो, सभी दादियों को हमने क्या देखा, उन्होंने इन ज्ञान रत्नों को अपने जीवन के अंदर इतने अच्छी तरह से धारण किया तो वो सच्चे गोल्डन ऐसे चमकते हुए हीरे बन गए। आज भी वो सारे विश्व के अंदर वो उस लाइट के द्वारा सारे विश्व को प्रकाश दे रहे हैं। तो इसलिए आप सभी जो हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, आपको पहले से ही ड्रामा अनुसार कौन सा भाग्य मिला है, जामनगर को कौन सा भाग्य है बताओ, बताया अभी जो बोला भूल गया है, है? भविष्य राजधानी, अभी भविष्य राजधानी हमारी कितनी सुंदर होगी। ये कलयुगी द्वारका जो है वो तो कलयुगी द्वारका है, और जिसका शास्त्रों में भी गायन आता है, भागवत में भी गायन आता है, वो तो यहाँ गायन करते हैं लोग, लेकिन आप तो द्वारका के नजदीक बैठे हैं ना, तो भविष्य सतयुगी दुनिया में विश्व महाराजन विश्व महारानियों के साथ आप राज्य करने वाले, और दूसरा श्री कृष्ण के साथ क्या बनेंगे, क्या बनेंगे हैं? प्रिंस प्रिंसेस, बोलो बाल सखा बनेंगे। जो कौन खेलेगा, बाल सखा होगा तो वही खेलेगा ना। गुजरात में तो कितनी रास करते हैं, और वहां पर इतनी रास करते हैं, तो अभी संस्कारों की रास करनी है, तो सतयुग के अंदर आप सभी क्या करेंगे, श्री कृष्ण के क्या बनेंगे बोलो, बाल सखा, और राधा के क्या बनोगे हैं? राधा के बाल सखी हैं? राधा के बाल सखी और श्री कृष्ण का बाल सखा। तो अभी गुजरात को तो वैसे ही बहुत बड़ी एक नेचुरल गिफ्ट मिली हुई है गरबा रास करने के। एक गीत बजा दो ना, चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, कोई भी हो, सब के सब रास करते हैं। तो आप सभी को तो बाबा ने पहले से ही वो कला दे ही दी है, और अभी क्या करना है, ज्ञान के रत्नों के द्वारा खेलते हुए खुशी की डांस करते रहना है। तो इसलिए देखो आप सभी का कितना बड़ा भाग्य है, आप सभी को जो टीचर मिली है हमारी सुषमा बहन, सुषमा बहन की कितनी विशेषताएं हैं, इतनी विशेषताएं हैं, पूरे साकार मम्मा बाबा दादियों की पालना ली, और पूरा का पूरा परिवार बाबा का ही है, और अभी भी अथक सेवा करते रहते हैं। ऐसा टीचर है किसी को मिलेगा नहीं मिलेगा ना, तो अपनी टीचर के लिए ताली बजाओ हैं। और दूसरी बात हमारी सोनल बहन, इनकी भी बहुत विशेषताएं हैं। सूरत की धरनी की कहानी सुनी है ना आपने, सूरत की धरनी किसने पैदा किया हैं बताओ, कैसे सूरत की धरनी में सेंटर कैसे खुला? देखो ये है मधुबन की विशेष स्थान, जब ये म्यूजियम खुला तो म्यूजियम के अंदर बहुत बड़े वीआईपीस आते थे, और बाबा के विशेष रत्न आते रहे हैं म्यूजियम के द्वारा, भारत और विदेश के कई सेंटर्स पर सेवा खुले हैं, और गुजरात में भी बहुत सारे सेंटर्स वहाँ पर खुले हैं। तो उस समय सूरत का एक कोई वीआईपी भाई और यहाँ पर म्यूजियम में आए थे, म्यूजियम में आए तो उस समय उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि हमारे शहर में भी ये सेंटर होना चाहिए। तो दादी प्रकाशमणि जी से खास बात किया था, और दादी ने खास लता दीदी को, लता दीदी गुजराती है लेकिन वो उस समय बेंगलोर में थी, उनको बुलाया और वहाँ पर बिठाया और लता दीदी ने वहाँ पर बैठ करके इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, बस रतन ही निकलते गए, बहुत रतन निकलते गए और बहुत कुछ सेवा बढ़ती गई और उस सेवा से पूरे कई गुजरात के कई स्थान और सौराष्ट्र में भी सेंटर खुल गए। तो वो जो बीज है सूरत की धरनी में डला हुआ है वो प्यारे बाबा का, क्योंकि बाबा का शुभ संकल्प था कि यहाँ माउंट आबू के अंदर म्यूजियम होना चाहिए, तो वो म्यूजियम बहुत सेवा करेगा। तो बाबा के शुभ संकल्प की आप रचना है। आप सभी कौन हैं? बाबा ने किसको पैदा किया है, किसको पैदा किया है? अरे बोलो ना, हमको पैदा किया, खुशी से नाचो। बाबा ने हमको पैदा किया, आपको जिसको पैदा किया हाथ खड़ा करो। सबको पैदा बाबा ने तो किया, किसी और ने किया? निमित्त बहनों को बनाया लेकिन पैदा तो किसने किया? बाबा ने किया। बाबा ने तो आप सबके लिए शुभ संकल्प किया। अच्छा, सूरत वाले और क्या करेंगे? बाबा हमेशा कहते हैं सूरत वालों को क्या करना है, अपनी है अपनी सीरत। सूरत और सीरत बोलते हैं ना, बाबा कहते सूरत तो वैसे ही योगी है ना, सूरत तो वैसे ही योगी है, नाम भी बहुत अच्छे हैं, खुशनुमा हैं, बाबा के घर में आते तो कितनी खुशी मिल जाती है। तो सूरत वाले अपनी सूरत के द्वारा बाबा की सीरत को प्रत्यक्ष करें। बाबा कहते ना बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते जितना आप योग का अभ्यास करते जाएंगे, जितना बाबा के साथ आपका बहुत प्यार होगा, उतना ही आप सबको बहुत कुछ अनुभव भी होंगे और आपके पास जो आने वाले हैं उनको भी विशेष अनुभव होंगे। तो सूरत वालों को बाबा ने दो काम दिए, एक है अपनी सूरत से सीरत द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना और दूसरा क्या काम दिया है कि ज्ञान रतन जो इतने सारे हीरे दिए हैं उन सब हीरों को जमा करते रहना है, बांटते रहना है, फिर क्या करेंगे, हीरों की माला बनाएंगे या मुकुट बनाएंगे, क्या करेंगे? कौन मुकुट बनाएगा? अरे मुकुट बनाते उस पर हीरे लगाते ना, बहुत सुंदर लगता है। तो सबको जो ज्ञान रत्नों का मुकुट बनाना है, मीन्स बाबा कहते सेवा की जिम्मेवारी। फिर बाबा ने एक बार कहा था ना कि बाप बैठा है आप बाप के गले की माला का दाना बनाने के लिए। कभी कभी बच्चे बाबा को कहते बाबा क्या करे, 8 की माला तो बन गई है, 108 की माला तो बन गई है, हमारा क्या होगा? बाबा ने कहा अपने को तैयार तो करो बाबा, एक लड़ी लगाएंगे, दूसरी लड़ी लगाएंगे, तीसरी लड़ी लगाएंगे, चौथी लड़ी लगाएंगे, तो इतनी सारी लड़ियां लग जाएंगी तो कितना सुंदर माला बन जाएंगी। तो अभी सूरत वालों को अनेक मालाएं बनानी हैं, सब प्रकार के रत्नों को चुन चुन करके इकट्ठा करना। एक बार का आपको बताती हूँ, बाबा के पास संदेशी वतन में गई और बाबा के पास गई तो वहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ था। तो बाबा से पूछा, बाबा ये पर्दा लगा हुआ है इसके पीछे क्या है? बाबा ने कहा बाबा अभी नहीं बताएंगे। तो बोला नहीं नहीं बताओ ना बाबा ये क्या है। बाबा ने कहा अच्छा अभी नहीं बताएंगे। फिर वो बहुत कहने लगी तो बाबा ने वो पर्दा खोला। जब पर्दा खोला तो वहाँ पर्दे के पीछे देवी देवताएं तैयार हो रहे थे। अच्छा तैयार हो रहे थे, एक का मुकुट यहाँ जा रहा है, एक का तिलक जो यहाँ की बजाय यहाँ जा रहा है, एक का बिंदी जो है ऊपर की ओर उड़ रही थी, एक का हाथ का कंगन नीचे गिरा पड़ा है। तो उसको देख करके वो हंसने लगी। बाबा ने कहा क्यों हंस रही हो? कहती है इनको पता नहीं पड़ता है कि मुकुट कहाँ लगाना है, बिंदी कहाँ लगानी है, कहाँ बिंदी लगा दी, कहाँ मुकुट लगा दिया। बाबा ने कहा देखो बच्चे अभी क्या करते हैं। बाबा ने मुकुट भी दे दिया है, बिंदी भी दे दिया है, हाथ के कंगन भी दे दिया, गले की माला भी दे दी है, लेकिन बच्चे अभी तक सेटिंग करने में लगे हुए हैं। अभी तक उसको सेट करने में इनको अभी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि अभी समय ऐसा आ रहा है कि बच्चों को अपनी सीट पर सेट होके बैठना है। तो सीट पर सेट होकर के बैठेंगे तो ये मुकुट जो जिम्मेवारी का मुकुट है वो भी सीधा रहेगा। तिलक जो प्रत्यक्षता का तिलक है, आज भी बाबा ने कितने तिलक दिए, वो तिलक भी प्रत्यक्ष रहेंगे और गले की मालाएं भी अच्छी तरह से चलेंगी और भविष्य स्वरूप भी सामने दिखाई देगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हमको अभी क्या करना है। और जामनगर वाले तो वैसे ही ऐसे स्थान पर बैठे हैं जो कि बाबा की विशेष शुभ संकल्पों की भूमि रही है, और वहाँ पर खास करके एयरफोर्स और सभी का कनेक्शन भी रहता है, जिसको बाबा कहते ना मिलिट्री देश की सुरक्षा करती है। लेकिन आप सभी जो है अपनी आत्मा की सुरक्षा माया से करते हैं। आज भी कल भी बाबा बता रहे थे, माया बहुत जबरदस्त है, नाक पकड़ लेती है, जोर से थप्पड़ मारती है, कभी कभी तो ऐसा जोर से मारती है मुंह पीछे कर देती है। तो वो क्या लगेगा, किसी का मुंह पीछे हो जाए तो वो व्यक्ति क्या लगेगा, कार्टून लगेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं माया भी कोई कम नहीं है, माया ढूंढती रहती है कि क्या करें कैसे करें। इसलिए बाबा हमेशा ध्यान खिंचवाते हैं कि हमको भी अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है। अभी फिर दूसरी बात, आप बाबा के घर में आए हैं, बाबा के घर में सब बाबा शुरू से लेकर के बच्चों को याद सौगात देते थे, साकार बाबा के टाइम से ही ये सिस्टम चला आ रहा है। बाबा अपने हाथ से, बाबा कहते थे लाडले बच्चे आए हैं, और बाबा बहुत प्यार भी करते थे और बाबा उन सबको सौगात देते थे। और बाबा कहते थे खाली हाथ किसको नहीं भेजना। अभी भी बाबा कहते ना सबको ज्ञान रत्नों से भरपूर करो और खाली हाथ नहीं भेजना। तो बाबा जब अव्यक्त हुए तो प्यारी दादी ने भी वही सिस्टम रखा कि बाबा के घर में जो भी बच्चे आते हैं सबको सौगात मिलती है। और अभी भी दादी के जो सिस्टम बनाया हुआ है उस सिस्टम अनुसार सबको सौगात मिलेगी। और ये सौगात है चद्दर, बेडशीट है, सबको ये मिलेगी। और ये बेडशीट भट्टी की याद सौगात है, भल कितनी भी बेडशीट हो ये बेडशीट किसको नहीं देना, ये खुद यूज़ करना। और बाबा हमेशा कलाकंद टोली खिलाते थे, मुँह खोलो किसके पास आवे बाबा बहुत प्यार करते। बाबा कभी कभी आते थे ना बच्चे, बाबा कहते मुँह खोलो, मुँह खोलो तो बाबा खुद खा लेते थे फिर खिलाते थे। तो बाबा बच्चों के साथ बच्चे जैसा उनको प्यार देते थे, बाबा फ्रेंड के रूप में भी बातचीत करते थे। बाबा कभी कभी बहुत हर प्रकार के रिलेशन से बच्चों से बातचीत करते थे। तो अभी आप सबको बाबा के घर से यह सौगात मिलेगी। और सौगात में पहले भाइयों को बुलाएंगे और मेरे से सौगात लेंगे और गीता बहन से टोली लेंगे। अच्छा आओ।
एक बार मधुबन में बाबा आए थे, हम तो द्वारका में थे, तो प्रोग्राम वो बनता था मकान, तो रमेश भाई को बुलाया बाबा ने, तो रमेश भाई ने फिर निर्वैर भाई को भी लाया। तो बाबा ने कहा पूछना है कुछ, तो रमेश भाई को याद आया तो उन्होंने कहा कि बाबा द्वारका में और सोमनाथ में दोनों में बाबा के भवन बन रहे हैं। तो बाबा ने कहा तो बच्चों को कहना कि इतना अच्छा अट्रैक्टिव भवन बाबा का बनाए कि कितना भी विरोध करता हो, चाहे कैसी भी आत्माएं हो, मन अंदर आने का ना करता हो, तो भी बच्चों को कहना कि इतना अच्छा बनाए कैसे भी करके वो आत्माओं की सेवा हो। नहीं तो हमने पहले इतना ऊंचा नहीं बनाना था, सिर्फ नीचे ही रखना था। तो तब से तो बाबा ने कहा कि क्योंकि ब्रह्मा बाबा की प्रत्यक्षता द्वारका से होगी, ये बाबा ने उस समय कहा था क्योंकि हमारे पास रमेश भाई आने वाले थे। तो तब से लेकर के इतने लोग अच्छे आए, आते रहते हैं अभी भी, नेशनल लेवल के भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी द्वारका में घूमने के लिए कई आते हैं। तो इसलिए वो बुद्धि में चल रहा है काफी समय से, और अभी नजदीक में अभी हम ऐसे आउट तो नहीं करेंगे, लेकिन अंदर संकल्प है कि नजदीक में जल्दी से जल्दी ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि कर्म भूमि कृष्ण की वो ही है, और जब बाबा इंडिया में आए थे तो ओखा से होते हुए आबू में आए थे, इसलिए ओखा में भी बाबा का पाठशाला तो चल रही है, लेकिन ब्रह्मा की प्रत्यक्षता जो होनी है उसके लिए हमारे सभी भाई बहनों का एक ही अब संकल्प है कि कैसे जल्दी से जल्दी बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे और करके ही रहेंगे। इसलिए हमारे जामनगर के एक एक आत्मा अपने का डायमंड बनना है। सूरत में डायमंड बनाते हैं, परंतु हमारे क्लास के एक एक आत्मा, चाहे भाई हो, बहने हो, कन्याएं हो, बच्चे हो, सब अपना पुरुषार्थ, इतने इन सभी में गुण है कि भले वो गुप्त होंगे लेकिन बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये भी हमें खुशी है।
मुबारक हो आप सबको, दोनों स्थान के भाई बहनों को बहुत बहुत बाबा प्यार से गोल्डन पुष्पों की वर्षा करते हैं। बाबा अपने लाडले बच्चों को देख करके वतन से ही देखते हैं। बाबा ने कहा ना, बाबा के पास बहुत बड़ी टीवी है, एक एक बच्चा क्या कर रहा है बाबा के पास समाचार रहता है, आपके पास तो छोटी टीवी रहती है, इधर उधर के समाचार देखते हैं। बाबा कहते मैं इधर उधर का नहीं देखता हूँ, अपने बच्चों से मिलता हूँ, कभी भी बच्चों से मिलने आ जाता हूँ, बच्चों के सामने खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं पड़ता कि बाबा मेरे सामने खड़ा। ये भी ध्यान रखना, सदा ध्यान रहे कि बाबा हमारे सामने हैं और बाबा हमारा साथी है, बाबा हमारी बैकबोन है। अच्छा, ओम शांति। अभी का हाँ जी, अभी सुना दो, सुबह क्लास में तो नहीं सुना दो। पहले मैं बता दूं कि जब सौगात लेने आएंगे अपना बैज जरूर डाल के आएंगे, क्योंकि कई और दूसरे जो बट्टी के बिना अन्य भाई बहने बैठे हैं वो हाथ को बैठे हों तो वो उठ सकते हैं, केवल बट्टी वाले ही बैठे रहेंगे। और कोई तो नहीं बैठा यहाँ पर? नहीं,
शायद कुछ सेवाधारी भी बैठे हैं,
हैं? सेवाधारी भी बट्टी के सेवाधारी वाले बैठे हैं, ठीक, बट्टी के सेवाधारी भी हाथ खड़ा करें, जो बट्टी वाले हैं खाना खिलाते सेवा करते वो बैठेंगे, क्योंकि उनको भी सौगात मिलेगी, पहले हम उनको बुलाएंगे क्योंकि उनको अपनी सेवा पर जाना होगा। बट्टी के सेवाधारी बैठेंगे, बाकी जो कोई पार्टी के भाई बहने हैं नीचे से आए वो नहीं, वो जाएंगे भोजन पर।
ओम शांति। कल 18 तारीख है, शुक्रवार। कल आपका जो सोमान है, मैं सर्व खजानों से भरपूर आत्मा हूँ। कल अमृत वेले से ही ये सोमान लेकर के चलेंगे। कल का दिन सफलता का दिन है। जैसे हर रोज 9 से 10 तक चार धाम की यात्रा करते हैं वैसे ही होगा, और 10 से 10:30 बजे तक यहाँ हॉल में संगठित योग रहेगा, और 10:30 से 11:30 हमारे सूरज भाई जी का विशेष क्लास रहेगा। क्लास का टॉपिक है सदा कंबाइंड स्वरूप कैसे रहे। 11:30 से 12:15 ब्रेक दी जाएगी। आज तो भुट्टे की जगह आपने शरबत पिया था ना, कल तो जो होगा फिर पूछ करके बताएंगे। फिर 12:15 से 1 बजे तक क्लास रहेगा सतीश भाई जी का। उनका विषय रहेगा निमित्त और निर्माण भाव लाने की विधि। तो इस तरह से कल की दिनचर्या रहेगी, फिर भी उसमें यदि कुछ भी फेरफार होता है तो आपको बता दिया जाएगा। ओम शांति।
पहले जो सेवाधारी भाई जिनकी ड्यूटी है खाना खिलाने की, वो इधर लाइन में आप बैठे रहो।